ओम शांति।
हमारे बीच में आदरणीय भ्राता मोहन भाई जी पधारे हैं। हम सबका बहुत सौभाग्य है। हम एक हाथ की ताली से भाई जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय भ्राता मोहन भाई जी, आप बचपन से ही बाबा के ईश्वरीय ज्ञान को जीवन में धारण किया है और सारे ही भारत देश के अनेक स्थानों पर आप स्थापना के निमित्त बने हैं। आप ONGC कंपनी में बहुत ऊंची पोस्ट पे कार्यरत रहे हैं और ईश्वरी सेवार्थ आपने VRS लेकर के अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरी सेवा में सफल किया है। आप साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। आपको भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण की सेवा अर्थ अवार्ड भी प्राप्त हुए हैं और 18 जनवरी 1969 में जब बाबा अव्यक्त हुए, आप कैसे गुवाहाटी से मधुबन पहुंचे, आपके पास वो भी बहुत अच्छे अनुभव हैं। आज का आपका विषय है मन जीते जगत जीत। हम आदरणीय भ्राता जी से सुनेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। एक बार हम सभी मिलकर उस रीति से बोलेंगे जैसा यज्ञ में प्रारंभ में ओम की ध्वनि की जाती थी और मन से, जैसे कि हम अपने को उस समय ही अनुभव करेंगे जैसे 1936 में जब यज्ञ की स्थापना हुई और उस समय के बाद 14 वर्ष तक जिस प्रकार से बाबा ने ब्राह्मण वत्सों को रखा। तो अंदर एक गहरी श्वास लेंगे और उस श्वास को धीरे धीरे निकालते हुए ओम की ध्वनि करेंगे और फिर श्वास लेके दूसरे श्वास में शांति की ध्वनि करेंगे। तो पहले हम सब गहरा श्वास अंदर लेते हैं। ओ महामंत्र है ओम शांति, जिसके आधार पर आज का जो विषय है मन को जीतने का, तो उस जीत को सहज ही प्राप्त किया जा सकता है, मन को जीता जा सकता है। जहां भी जीत अक्षर सुनते हैं, जीत विक्ट्री, तो बहुत खुशी उमंग उल्लास से मन भर जाता है, क्योंकि जीत अर्थात जो भी हमारे मन में संकल्प है, जो भी हमने कर्म किए हैं, हमारी इच्छा अनुसार उसका फल प्राप्त होना, वो ही जीत है। तो इसीलिए मन जीते जगत जीत ही सब विजय का आधार है। कर्मातीत अवस्था कहें, फरिश्ता स्वरूप स्थिति कहें, विजय माला का मणका बनने का आधार ये ही है। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में सब में बहुत मन का बहुत गायन है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन चंगा तो कठौती में गंगा, और गीता में भी सारे ज्ञान का आधार क्या है, मन मना भव। इसीलिए इस बात को ब्रह्मा बाबा ने भी शुरू में बहुत समझा। जब ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर के शिव बाबा ने ज्ञान सुनाना प्रारंभ किया, तो बाबा ने अनुभव किया बाबा भी लौकिक रीति से अगर देखा जाए सोचा जाए, बाबा भी ब्रह्मा बाबा भी दादा लेखराज उस समय थे, तो उनका भी बाबा का ये अनुभव किया बाबा ने कि मन जो है बड़ा चंचल है। सब मन को ज्ञान हो गया कि मैं आत्मा हूं, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, लेकिन मन पुराने संस्कारों के आधार पर भाग जाता है। तो आज हम इस आधार पर ही आज के विषय को देखेंगे, मन जीते जगत जीत को, कि बाबा ने कैसे जीता मन। क्योंकि मुझे ब्रह्मा बाबा के साथ 8 साल रहने का सौभाग्य भी मिला और बाबा की अंतिम कर्मातीत अवस्था को देखने का अपनी आंखों से वो सौभाग्य भी मिला। तो इस उस आधार पर, क्योंकि अभी तक एक ही आत्मा बनी है जो कर्मातीत अवस्था को जिसने पाया है और जो संपूर्ण रीति से विजयी बनी है, तो इसीलिए और कोई आत्मा तो ऐसी है नहीं। इसलिए ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ही इस प्रकार से ये किस हम आगे और बढ़ते जाते हैं। तो बाबा ने जब ये अनुभव किया पहले कि मन भाग जाता है, क्या करें, और सब अनुभव करने के बाद शुरू में ही बाबा ने ये मन को पत्र लिखा, लेटर लिखा। मालूम है मन को कैसे लेटर लिखा बाबा ने? ऐसे लेटर लिख सकते हैं कोई चेतन में हो कोई हो, लेकिन मन को हम पत्र कैसे लिखेंगे? तो मन में जो भावनाएं थी बाबा ने पत्र के रूप में लिखी, बिल्कुल सच्ची साफ। हे मन, मैं आत्मा राजा हूं और तू मेरा मंत्री है। जो ज्ञान में शुरू में बाबा ने सुना कि मन जो है वो तो एक वो है आत्मा के वश में, एक इंद्रिय है सूक्ष्म, तो हे मन मैं आत्मा राजा हूं तू मेरा मंत्री है, लेकिन फिर भी तू इतना शक्तिशाली हो गया कि तूने मुझ आत्मा राजा को अपने वशीभूत कर लिया और तू जहां जहां कहता रहा मैं तेरे पीछे पीछे भागता रहा। लेकिन हे मन, दूसरा नेक्स्ट पैरा में बाबा ने लिखा, क्योंकि उस पत्र की एक एक कॉपी ट्रांसलेशन करके हम लोगों को दी गई थी, क्योंकि बाबा ने तो सिंधी में पत्र लिखा था, उसका हिंदी अनुवाद करके जो यज्ञ के वरिष्ठ भाई बहन थी उनको दी गई थी। तो सेकंड नेक्स्ट पैरा में बाबा ने लिखा, लेकिन हे मन अब मैं तुझे बता देता हूं कि अब मैं आत्मा राजा अपनी स्वस्थिति में स्थित हो गया हूं और अब मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा, क्योंकि तू मंत्री है मैं राजा हूं, अब तुझे मेरे कहने पर चलना होगा। और इसी तरह बाबा ने बुद्धि को भी पत्र लिखा कि हे बुद्धि तू भी मन के कहने पर मन के साथ साथ चलती रही और तुम दोनों ने मिलकर मुझ आत्मा राजा को इतना कमजोर कर दिया कि मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे चलता रहा भागता रहा। बिल्कुल ये वास्तविकता ही तो है ना, हम सभी की पूरी दुनिया की सभी आत्माओं की वास्तविकता है। तो बाबा ने वास्तविकता को छिपाया नहीं, बिल्कुल स्पष्ट लिखा। और सच्चे दिल पर साहब राजी, तो सच्चे दिल से बाबा ने लिख करके ये करा। और अब मैं तुझे कह देता हूं मन बुद्धि अब तुझे मेरे कहने पर चलना होगा, क्योंकि मैं अपनी स्वस्थिति के सिंहासन पर स्थित हो गया। तो सतयुग त्रेता में तो हम सिंहासन पर स्थित होते ही हैं, लेकिन द्वापर से जब से हम अपने स्वस्थिति के सिंहासन से हिले उतरे तब से मन बुद्धि ने भागना शुरू कर दिया। लौकिक दुनिया में भी यही होता है ना, कोई मानो राजा है प्रेसिडेंट है प्राइम मिनिस्टर है, जब तक वो सीट पर स्थित है पोस्ट पर है, पोजीशन पर है, तब तक तो सब उसका कहना मानते हैं, लेकिन जब वो उससे रिटायर हो गया या ट्रांसफर हो गया या पॉलिटिकल लीडर है हार गया, पोस्ट पर नहीं रहा, तो कोई उसका कहना मानेगा? नहीं मानता। तो ऐसे ही हम आत्मा राजा भी जब स्वस्थिति के सिंहासन से उतरकर कुछ कामना करते हैं, कुछ इच्छा करते हैं, किन्हीं शक्तियों को ऑर्डर देते हैं, तो कोई हमारा नहीं मानता, क्योंकि हम पोस्ट पर है ही नहीं, सिंहासन पर स्थिति नहीं है। तो पहला काम हमें ये करना है, जब भी हम कोई इच्छा रखते हैं, कोई शक्ति को ऑर्डर देते हैं, मानो कोई व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, बस समाने की शक्ति की जरूरत है मुझे, सहन शक्ति की जरूरत है, या कोई समेटने की शक्ति की जरूरत है, तो हम चाहते हैं वो आए, लेकिन वो आती नहीं। क्यों? क्योंकि हम पहले स्वस्थिति की सीट पर सेट नहीं होते। थोड़ी देर हम स्वस्थिति की सीट पर सेट हो करके फिर हम उस गुण या शक्ति को ऑर्डर करेंगे, वो तुरंत मान लेगी। तो बाबा ने इस बात को रियलाइज किया शुरू में ही, और उसके बाद से फिर कभी भी बाबा को मन और बुद्धि ने धोखा नहीं दिया, हमेशा बाबा के नियंत्रण में रही। उसके भी क्या पहचान है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस कारण से ऐसा जब होता है तो हम भी देखें, जब कभी कोई विपरीत परिस्थिति है, कोई मन हलचल में है, कोई संबंधों में कोई कटुता आ गई, अथवा कोई ऐसी परिस्थिति आ गई जहां हमें लग रहा है कि ये तो विकट परिस्थिति है, तो क्या करें? विकट परिस्थिति आई तो जस्ट थोड़ी देर में हम अपने को आइसोलेट कर लें, अलग कर लें उससे, और बस मैं अपने कुछ स्वमान में स्थित हो जाऊं। जो इतने अनेक स्वमान बाबा ने बताए हैं उनको मन ही मन कई बार थोड़ा सा रिपीट करो, बस मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, मैं विजयी आत्मा हूं, कलप कलप की विजयी आत्मा हूं, ये परिस्थिति जो अभी मेरे सामने आई है ये तो कलप पहले भी आई थी, कलप पहले भी मैंने इस पर विजय प्राप्त की थी, और अभी भी मैं विजय प्राप्त करने जा रही हूं, ये संकल्प आ जाएगा। और पहले से ही एंड रिजल्ट मालूम अगर होता है ना, तो मन के अंदर बहुत शक्ति आ जाती है, मालूम है इस पर हम विजय प्राप्त करने वाले हैं, तो बस कोई इमीडिएट परिस्थिति आई भी डगमग होने वाली, लेकिन वो हिला नहीं सकती, क्योंकि हमें मालूम है कि ये अल्टीमेटली विजय मेरी निश्चित है। तो ऐसे ही जो बाबा ने वो करे हैं, और तुरंत बाबा को अपने को ये महसूस करो कि मैं एकदम सेफ हूं, ये माया या परिस्थिति रूपी पेपर जो आया है, मैं बाबा के दिल तक नशीन आत्मा हूं, बाबा मैं आपकी मस्तक मणि हूं, मैं आपके सिंहासन और आपने मुझे डबल ताजधारी बनाया है, और ये परिस्थिति तो मेरे सामने कुछ भी नहीं। और अपने को ऐसे जैसे हनुमान को कहते हैं जब याद दिलाई जाती थी तो उसमें शक्ति का संचार हो जाता था, ऐसे अपने को बस याद दिलाएं और फिर तुरंत ही शक्ति को ऑर्डर करें, हे सहन शक्ति या समाने की शक्ति, आओ इस समय मेरे व्यर्थ संकल्प बहुत चल रहे हैं, आओ और मुझे इस व्यर्थ संकल्प से मुक्त करो। लेकिन पहले इस अपने पोस्ट पर, अपने स्वस्थ स्थिति के सिंहासन पर स्थित होना जरूरी है। तो बाबा का ये देखा कि पहले स्थित होकर के तुरंत ही, और शुरू में परिस्थिति भारी लगती है, लेकिन धीरे धीरे वो स्वस्थिति शक्तिशाली होने लगती है, और जो स्वस्थिति कमजोर थी वो धीरे धीरे शक्तिशाली हो जाती है, परिस्थिति जो पहले भारी बड़ी लगती थी शक्तिशाली, वो धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, तो स्वस्थिति परिस्थिति के ऊपर विजय पा लेती है। अंत तक बाबा का देखा, 18 जनवरी तक बाबा का देखा, एक तो बाबा के सामने ये पेपर खांसी रूपी पेपर आता था, इतनी उम्र 93 इयर्स, इतना सर्दी का मौसम यहाँ पर, लेकिन बाबा को कई बार खांसी आती थी और आंख भी गीली हो जाती थी, बस ऐसा लगता था जैसे बाबा को बहुत कष्ट हो रहा है, जैसे लेकिन थोड़ी देर वो रही और फिर बाबा कैसे इस परिस्थिति से निकलता था, अभी भी हिस्ट्री हॉल में आप जाओ वहां पर बाबा के पास ही ट्रांसलाइट का चित्र रखा हुआ है, लक्ष्मी नारायण का, श्री कृष्ण का। तो बाबा बस स्वस्थिति को मजबूत करता था, देखो बच्चे अभी तो ये पुराना तन है, पुराने पांच तत्वों का बना शरीर है, इसमें ये तत्व भी पेपर ले रहे हैं और हिसाब किताब शरीर के चुकतू हो रहे हैं, खांसी आ रही है, लेकिन कल बाबा जाके ऐसा मिचनू कृष्ण बनेगा, नए तत्व होंगे, नई दुनिया होगी, कोई भी कष्ट नहीं, कितनी सुखमय दुनिया होगी। अब बाबा ऐसा वर्णन करते करते ही ना बाबा का बस चेहरा एकदम ऐसा खिल जाता था, उस स्वरूप में स्थित हो जाता था और फिर खांसी कहाँ गई, खांसी रूपी पेपर वो पता ही नहीं चलता था दूर। तो हम भी अपने लिए जो कोई परिस्थिति आती है अपनी स्वस्थिति को पहले मजबूत बना के स्वस्थिति द्वारा परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने का वो हर चीज का हमारा प्लान रेडी हो रहना चाहिए, कौन सी परिस्थिति आएगी उसमें कौन सा टूल इस्तेमाल करना है, क्या साधन इस्तेमाल करना है। बाबा के सामने बहुत क्लियर कट आता था, कितनी बातें आती थी यज्ञ की, कितनी परीक्षाएं होती थी, लेकिन बाबा कभी भी तो क्या, क्योंकि जो अल्टीमेटली बाहर विजय तब होती है पहले मन में विजय होती है, तो मन में जो हार गया वो बाहर कर्मों में भी हार जाता है, मन में जो जीत गया उसका उस जीत प्रत्यक्ष कर्मों में भी रिजल्ट में भी प्रत्यक्ष दिखाई देती है। तो इसीलिए एक तो हम सदा ये याद रखें कि मन को ना किस प्रकार से हमें अपने आधार पर चलाना है, न कि मन के आधार पर मुझे चलना है। और इसमें दो तीन चीजें मुख्य काउंट करती हैं। मन, मन का काम क्या है, संकल्प। तो कोई भी पेपर आता है, कोई परिस्थिति का पेपर, व्यक्ति का पेपर, तन मन धन समय संकल्प, किसी भी बात का कोई पेपर आता है तो काउंट करता है पहली बात हमारा पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, हमारे पूर्व ग्रह पूर्वानुभव। कोई भी व्यक्ति आया मानो, तो व्यक्ति अब अच्छा भी है लेकिन हमारे पहले के अनुभव कुछ कटु है, उसने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, तो बार बार पहले के अनुभव पूर्वाग्रह बायस्ड माइंड वहां काम करेगा। और ये हमारा मन के संकल्प जो है ना बॉल की तरह है, जो हमने मन के संकल्प भेजे वो ही रिबाउंड होकर के मेरे पास आते हैं। मेरे मन में आया अच्छा ये व्यक्ति आ रहा है, इसने मेरे साथ ये किया था, ये निगेटिव किया था, ये मेरे मार्ग में बाधा खड़ी की थी। जैसे ही निगेटिव संकल्प का बम्बार्डमेंट हुआ मन से बाहर की तरफ, उस व्यक्ति तक भी वो पहुंचा और उसके मन में भी वैसा ही कई गुना रिमाउंड करके वो उस निगेटिव एनर्जी को हमारे पास भेजता है। तो इसीलिए कभी भी किसी के प्रति हम पूर्वाग्रह न रखें। बस देखो, बदलने का हर एक को आदर है। हम भी अपना देखें, हम सब जब ज्ञान में नहीं थे तो कैसे थे, क्या हमारा जीवन था, लेकिन बाबा ने बदल दिया और रोज हम बदलते जा रहे हैं। जो 10 साल पहले थे वो 5 साल पहले नहीं थे, 5 साल पहले वो आज नहीं है, और हमें विश्वास है कुछ समय के बाद हम संपूर्णता के जरूर नजदीक पहुंच जाएंगे। तो इस कारण से परिवर्तन संसार का नियम है। तो उस व्यक्ति में भी जो पहले निगेटिव संस्कार रहे होंगे, वो बातें रही होंगी, उसके आधार पर ही ना हम उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। इसलिए संकल्प के ऊपर ही हम विशेष ध्यान दे कि वो संकल्पों को बिल्कुल खत्म कर दे उस समय। नहीं, वो कब होगा, जब उस व्यक्ति के हम गुण मन में लाएंगे। देखो, गुण होते हैं लेकिन उसने हमारे साथ ऐसा किया है तो वो बात याद आती है, गुणों को दबा देती है, लेकिन जो भी कुछ गुण हो उनको सामने ला करके, नहीं हे आत्मा तुम तो बहुत महान हो, आप में ये गुण है, ये है, थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी हमने भेजी, तुरंत ही उधर से भी पॉजिटिव एनर्जी का बम्बार्डमेंट होगा और वो हमारे पास आएगी। इस तरह कई गुना हो के ये वातावरण ही हमारा पॉजिटिवली स्पिरिचुअली चार्ज हो जाएगा, नहीं तो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो एक तो ये हमारा काउंट करता है क्या, पास्ट एक्सपीरियंस। दूसरा एक बात और है कि हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है, हम किस बात के ऊपर ना विश्वास करते हैं। हर व्यक्ति का अपना अपना बिलीफ, पहले हमारा बिलीफ सिस्टम कुछ और था ज्ञान में आने से पहले, और बिलीफ सिस्टम माने हम क्या सोचते थे। ये थोड़ी हो सकता है कि हम संसार को छोड़ दें, दुनिया की बात न माने, और ब्रह्मा कुमारी जो बोलते हैं बाहर का मत खाओ, ये सिनेमा मत देखो, ये तो बिलीफ सिस्टम पहले वैसा था तो ये चीज बहुत कठिन लगती थी। लेकिन जैसे जैसे हमारा बिलीफ सिस्टम चेंज होता गया, बदलता गया, तो क्या हुआ, बदलने के साथ साथ हमारे कर्मों में भी बदलाव आता चला गया। तो इस कारण से मुख्य ये बात है कि हम अपना एक तो बिलीफ सिस्टम भी चेंज करें। बाबा कहता है पास्ट एक्सपीरियंस से लाभ उठाओ, लेकिन पास्ट को अपने ऊपर हावी मत होने दो। हमें रहना प्रेजेंट में है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर होता है ना, तो रहना हमें प्रेजेंट में है। प्रेजेंट माने क्या, प्रेजेंट माने गिफ्ट। बर्थडे पार्टी में जाते हैं, मैरिज पार्टी में जाते हैं तो प्रेजेंट ले जाते हैं ना, कोई भी गिफ्ट ले जाते हैं। तो ये जीवन प्रेजेंट हमारा भगवान की गिफ्ट है, भगवान का दिया हुआ है, ये अब हमारा जीवन नहीं है। जब से हमें ज्ञान में मिला है ये तन भी हमारा नहीं है, बिलीफ सिस्टम सोचना, ये सब हम अमानत में ख्यानत करते हैं। अगर हम एस पर हमारी डिविनिटी के आधार पर सोचते नहीं, बिहेव नहीं करते, कर्म नहीं करते, इसका मतलब हम अमानत में ख्यानत। किसी ने कोई चीज हमें दी, भाई थोड़ा रख लो इसे, और हम उसे अपनी समझ के यूज करते रहे, खर्च करते रहे, और जब वो मांगने आया हम क्या खत्म हो गए, ये अमानत में ख्यानत हो गई। तो इस कारण से ये अपने को एक हम और चेक करते रहे। इसका प्रमाण क्या है कि हम संपूर्णता की तरफ बढ़ रहे हैं। यहां पर बाबा को भी देखते थे, जितना जितना हमारे मन के ऊपर कंट्रोल होता जाएगा तो क्या होगा। हम लोग शुरू में बाबा कहते थे, बच्चे जो भी तुम्हारी जीवन कहानी है उसको लिख करके लाओ, और या जो भी तुम्हारा जीवन है, जितना कमाते हो, जो करते हो, भगवान के घर ट्रस्टी हो, तो उसका हिसाब बाबा को दो। तो बाबा बताएगा कि कैसे तुम्हारा जो मतलब एक एक पाई भी कौड़ी भी हीरे जैसी बन जाए। तो हम लोग सब लिख करके दिया करते थे बाबा को, कई साल तक लगातार साकार बाबा के सामने, और बाबा की नजर वहीं चलती थी। अब इतना टाइम तो होता नहीं था, बहुत बच्चे थे सबका, बस बाबा यूं करके पलटा, और जहां पर कुछ करेक्शन देनी होती थी बाबा की नजर वहीं जाती थी, और तुरंत ही बाबा कहते थे अरे बच्चे ये क्या, इसको ऐसे करो। हमें याद है कितनी बार ऐसे होता था, हमारा वाशरमैन का धोबी का खर्चा बहुत होता था, तो बाबा ने देखा, उसकी विधि बताई। बाबा ने अपने घर से, तब तो 60s में नया नया टेरिलीन और टेरिकॉट वगैरह चला था, तो बाबा ने उसके सेट दिए, बहुत कम हो गया सडनली खर्चा। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें ऐसी अनुभव सुना है, लेकिन मन जीते जगत जीत, जीतने की विधि क्या क्या है और उसके प्रमाण क्या क्या है। तो एक तो ये होता था कि जब भी पेपर आए उसको, परिस्थिति आएगी लेकिन स्वस्थिति को हम धीरे धीरे मजबूत करके उस परिस्थिति पर विजय प्राप्त करते रहे। और बाबा अभी बता रहे हैं ना, इसकी जब जितने जितने हम विजय की तरफ बढ़ते जाएंगे, मन जीते जगत जीत, इसका भाव क्या है, जिसने मन जीता उसने जगत को जीत लिया। यानी कि जगत को जीत लिया माने क्या, जगत के व्यक्ति हैं, वस्तु है, प्रकृति के 5 तत्व हैं, इन सबको जीत लिया। जगत में तो ये प्रकृति भी आती है ना, 5 तत्व भी है ये। इस कारण से एक ये भी देखना है कि किस हम कैसे हम, क्योंकि ये प्रकृति ही हमारा ऐसा साथी है जो अंत तक हमें साथ देने वाला है, और इसके आधार पर ही हमारा सारा जीवन आगे आने वाले 84 जन्मों का आधार है। इसके आधार पर कैसे, इसके आधार पर तो ये देखें, क्योंकि आत्मा तो इस शरीर में रहती है और कहा जाता है जैसा अंत मते सोगति का गायन है ना, तो बार बार बाबा अभ्यास इसीलिए कराता है कि अंत में जब हमारे प्राण स्तन से निकले हैं उस समय हमें और कोई भी याद ना हो। इसीलिए बाबा कहता है अभी बच्चों को ये समेटने की शक्ति की बहुत जरूरत है। जितना हमने बिजनेस का फैलाव किया है, गृहस्थी का फैलाव किया है, जितना जितना हमने ना परिवार का, वो सबको हम धीरे धीरे समेटते जाए, क्योंकि जहां पर हमारी बुद्धि होगी वहीं अंत समय जाएगी, अटकेगी, और वो हमें कर्मातीत नहीं बनने देगा। फिर बाबा ने कहा जहां पर बुद्धि अटकी वहीं फिर पुनर्जन्म लेना पड़ेगा हिसाब किताब सेटल करने के लिए। कर्म की गति बड़ी गुह्य है, इसलिए क्या करना है कि अभी अगर मानो हमने विल नहीं बनाई है अभी तक, तो विल बना लें सब कि भाई हमारे जाने के बाद ऐसा ऐसा, भले हम सोचें अभी क्या, अभी मेरी उम्र है, अभी तो वो ठीक है, लेकिन बाबा ने अचानक और एवर रेडी के पार्ट में कितनी बात कही है। कल ही बाबा की जो मुरली थी एवर रेडी की निशानियां बाबा ने क्या क्या बताई थी, कितनी कल की अव्यक्त मुरली थी, उसे कितने प्रकार की अनुभूतियां होंगी, अनेक कल की अव्यक्त मुरली सुनी होगी ना, तो उसमें बाबा ने चार प्रकार की अनुभूतियां बताई थी, एक एक करके आप लोगों ने कल सुनी होगी। तो वो अनुभूति अपने से लगाओ, मुरली सुनते वक्त तो अच्छी लगती है लेकिन फिर उसे एकांत में जाके उसका थोड़ा मनन चिंतन करके फिर अपने से लगाओ मैं किस जगह हूं। तो कल की मुरली में बाबा ने पहली अनुभूति कौन सी बताई थी, कोई बोल रहा है ना, न्यारेपन की अनुभूति। तो ये न्यारेपन की अनुभूति क्या के लिए बाबा ने क्या उदाहरण दिया था, वस्त्र का उदाहरण। ये वस्त्र पहना है ना, तो ये बस माइंड में सेट है कि ये वस्त्र अलग है मैं अलग हूं, न्यारेपन की अनुभूति है वस्त्र का। ऐसे ही शरीर का यही हो कि मैं ये शरीर से अलग न्यारी आत्मा हूं, मैं इस शरीर में आत्मा हूं ये नहीं, मुझ आत्मा ने ये शरीर धारण किया है, मैं प्राइमरी हूं ये शरीर सेकेंडरी है, इस कारण से मुझ आत्मा ने ये शरीर धारण किया है, तो न्यारेपन की अनुभूति होती जाए। तो भट्टी में तो आप लोगों को टाइम मिलता है काफी, तो कल के दिन भी ऐसा करा होगा, ना करा हो तो और करो, आज भी समय निकाल के एक तो इस बात की भी अनुभूति करें। और दूसरी क्या अनुभूति थी, साक्षात मूर्त की, कि ज्ञान तो है कि मैं आत्मा हूं, और बाबा ने उदाहरण दिया, किसके साथ उदाहरण दिया, जिनका साक्षात्कार का पार्ट है। कुछ आत्माओं का साक्षात्कार का पार्ट है, बाबा ने कहा वो तो पार्ट है, वरदान है कुछ आत्माओं का, लेकिन वो तो थोड़े समय तक है और उससे कोई विकर्म भस्म नहीं होते, लेकिन आप ये अनुभूति करो मैं साक्षात आत्मा अनुभवी मूर्त, साक्षात आत्मा हूं, उसमें कभी मूल वतन में चले जाओ, कभी सूक्ष्म वतन, कभी ऐसे अलग अलग स्थिति में वो अपने को अनुभूति करो। तो उससे क्या होगा, जब भाई मैं आत्मा हूं, इस आत्मा को देख रही हूं, इसका भ्रकुटि में हरेक को वैसा ही देख करके, और ये तब होगा जब थोड़ा सा मन का एकांत भी होगा। बाहर का तो एकांत यहां आपको मिल रहा है, लेकिन मन का एकांत कितना मिल रहा है वो हरेक इंडिविजुअली देखे, क्योंकि अगर यहां आकर भी बाहर के धंधे की या कोई संबंध की या कोई स्मृति अगर है तो मन का एकांत नहीं है। तो यहां पर वो देखो कि जैसे बाबा ने मन को हंटर लगाया, और फिर मन शांत होके बैठ गया। ऐसे ही मन अगर कहीं भागता है तो उसे बिल्कुल हंडर लगा के शांत, नहीं ये मन अभी 3 दिन तक तुझे यहां पर आने का बिल्कुल हुक्म नहीं है, यहां मुझे अभी एकांत में रहने दो। तो उसमें फिर आप अंदर अपने गहरे उतर सकेंगे। और जितना अंदर, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति ने ना स्पिरिचुअलिटी में बहुत कुछ दिया है, और उसके अंदर ना उसका एक ये बात कि बाहर की यात्रा करके तो अब आप यहां पर आ गए, अभी यहां आकर के अंदर की यात्रा करो। और बस इसलिए एक किसी ने कहा है बहुत अच्छा, वो सुना होगा, क्योंकि हम बचपन से हम लोगों का एक संस्कार सा बन गया है, अभी भी कोई भी बात अगर होती है ना, तो इन संबंधों में टकराव हुआ, कोई भी बात हुई, हम दूसरे को ब्लेम कर देते हैं। उसने ये किया तो मुझे क्रोध आ गया, उसने ऐसा किया तो मैंने ये करा, तो उससे क्या होता है, हम अपने को ब्लेम नहीं करते इसीलिए। और ये ही मन में विकल्पों का ज्यादा कारण है। अभी बाबा ने कहा, गुलजार दादी बता रहे थे, एक बार क्लास करा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि बाबा ने सर्टिफिकेट दिया ब्राह्मणों की सभा लगी हुई थी कि देखो अभी ये ब्राह्मण बच्चे हैं सब तो पवित्र तो बन गए हैं, अब इनके मन में बहुत विकारी विचार तो नहीं आएंगे, लेकिन व्यर्थ विचार बहुत आते हैं, विकारी नहीं लेकिन व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं। और वो व्यर्थ संकल्प जो है वर्तमान समय के मुताबिक वो बहुत गहरा दाग है, क्योंकि वो दाग कभी कपड़े पर कुछ चीज निशान लग जाता है, वो दाग नहीं निकलता ना। तो इस कारण से अभी बच्चों को ये देखना है कि वो व्यर्थ संकल्प भी ना आए, क्योंकि वर्तमान समय वो व्यर्थ संकल्पों पर विजय पाना वो बहुत आवश्यक है। एक तो बाबा ने ये बताया, और बाबा ने क्या बताया, बाबा ने कहा हाँ गुलजार दादी एक बार गए तो देखा ब्राह्मणों के वहां 2 लाइन लगे हुए थे अलग अलग, और ध्यान में वहां देखा तो एक तो थे ब्राह्मण बच्चे जिनके चेहरे पर बहुत खुशी थी, आनंद थी, उमंग उल्लास में थे, वो थे, और दूसरे बच्चे थे जिनके मन में बहुत उदासी थी, खुशी नहीं थी चेहरे पर, भले सफेद कपड़े थे, बैच लगा हुआ था, सब कुछ था, लेकिन खुशी नहीं थी। तो बाबा ने कहा देखो बच्ची क्या देख रही हो, तो फिर बाबा ने ही बताया कि देखो ये मेरे 2 प्रकार के बच्चे हैं, और ये वही रोज मुरली सुनते हैं, वही ज्ञान है, सब कुछ वही है, बाबा ने कोई डबल करके नहीं दिया है, लेकिन एक बच्चे हैं जो ज्ञान को थोड़ा सा भी मनन करते हैं और वो खुशी में आ जाते हैं और उमंग उल्लास और खुशी में बढ़ते रहते हैं, और दूसरे बच्चे हैं जो ज्ञान सुनते हैं, सब कुछ वही है ऊपर से देखने का, लेकिन अंदर में वो सदा काल की खुशी नहीं है। तो बाबा ने क्या बोला उसमें, बाबा ने कहा अभी भी समय है, और उसमें काफी लोग थे जो दूसरी लाइन के पहली लाइन में शामिल हो रहे थे, जिनमें उमंग उत्साह नहीं था, उधर से निकल के इधर आते जा रहे थे और ये लाइन बढ़ती जा रही थी। तो बाबा ने कहा अभी भी समय है रियलाइज करने का, और जो बच्चे रियलाइज कर रहे हैं वो रियलाइज करके उनको अपने को परिवर्तित करके वो उस लाइन में आते जा रहे हैं सदा खुशी की लाइन में, लेकिन जो दूसरे बच्चे हैं अभी तक भी वही पुरानी अगर चाल है तो वो रियलाइज नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनमें चेंज नहीं हो रहा है, परिवर्तन नहीं है। तो इसीलिए बाबा ने एक तो ये बताया। तो अभी जो आवश्यकता है बाबा ने कहा, अपवित्र विकारी संकल्प बच्चों को नहीं आएंगे लेकिन व्यर्थ संकल्प बहुत आएंगे, क्योंकि सब प्रकार के हिसाब किताब अभी बच्चों के और चुकतू होने हैं। बाबा ने कहा अंत में 2 प्रकार के 2 पेपर विशेष बच्चों के सामने आएंगे। कौन से दो पेपर? कई बार बाबा ने कहा है अंत में दो पेपर होंगे, एक पेपर परिवार का पेपर होगा, क्योंकि हम धीरे धीरे दुनिया से तो कट ऑफ हो गए, दुनिया से हमारा उतना ही नाता है जितना आवश्यक है, बस कर्म कार्य व्यवहार के लिए, बाकी न खाना पीना न उनके साथ रहना, ज्यादा हमारा ब्राह्मण संसार ही एक अलग हो गया है। एक है परिवार का पेपर, दूसरा है शरीर का पेपर। ये दो पेपर अभी बच्चों के सामने आएंगे, और किस रीति से आएंगे? ये शरीर का पेपर, यंग बच्चे भी हैं कोई और बहुत वृद्ध नहीं है, अरे शरीर का क्या, कोई शरीर का बीमारी भी मुख्य है, शरीर का हिसाब किताब यानी बीमारी का पेपर। तो जो वृद्ध हैं या बीमार हैं वो तो इस बात को रियलाइज करते हैं, लेकिन जो बच्चे ठीक है जिनका शरीर, वो समझते हैं कि मेरा तो शरीर बिल्कुल ठीक है अच्छा है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि अभी इस शरीर के द्वारा ही मुझ आत्मा को पिछले 63 जन्मों के कर्मों का हिसाब, बचा हुआ हिसाब किताब चुकतु करना है। बाबा ने कहा था जो मेरे अनन्य बच्चे हैं, जो बच्चे मेरे दिल में हैं, उनका हिसाब किताब मैं यहां ही चुकतु कराता हूं, जिससे उन्हें धर्मराजपुरी में हिसाब किताब चुकतु के लिए न जाना पड़े और वो सीधे ही मेरे साथ चले। तो देखो जिनका यहां अगर हिसाब किताब चुकतु होता है, कई बार कईयों के मन में प्रश्न आ जाता है, अरे हमारी इतनी बड़ी दादी जी, इतने बड़े दीदी, इतने बड़े भाई, ये इनको शरीर ये बीमारी हो रही, ये कष्ट हो रहा है, ये योजना भोगना भोगनी पड़ रही है, लेकिन ये भी परम सौभाग्य की बात है, क्योंकि बाबा चाहता है अल्टीमेट एम कि ये जो मेरे माला के मणके हैं ना, इन्हें धर्मराजपुरी में सजा कोई नहीं, बस यहां पर, और यहां भी सजा कैसी होगी? सूली से काटा। हम तो दादी जी के साथ बहुत रहे, बाबा के साथ कितनी बार हमने देखा, बाबा मम्मा के साथ इतनी व्याधि होती थी, इतना कष्ट, लेकिन पूछते थे, उस समय तो हम इतना वो नहीं, फ्रैंक नहीं थे, बड़े नहीं थे, दादी के साथ तो हमने कितनी बार पूछा, दादी आपको डॉक्टर बोलता है, प्रकाशमणि दादी को, आपको तो इसमें बड़ा कष्ट हो रहा होगा, तकलीफ हो रही होगी, तो दादी कहती है नहीं मुझे तो बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हो रही। तो हम लोग कहते नहीं दादी, आप हम लोगों का दिल रखने के लिए ऐसा बोल रहे हो कि नहीं नहीं वाकई नहीं, बस मुझे जब भी कोई आती है बात, मैं तो बस थोड़ी न्यारी हो जाती हूँ, ये शरीर अलग है, मैं आत्मा हूँ, न्यारी हूँ, और इस अनुभूति में होती हूँ, तो शरीर में कष्ट होगा, डॉक्टरों ने बोला है, लेकिन उसका कष्ट का अनुभव तो आत्मा करती है ना, चेतन तो वही है, जैसे कि कोई भी क्लोरोफार्म देते हैं या कभी एनेस्थीसिया शरीर को देते हैं, तो वो पार्ट सुन जैसे हो गया और शरीर को काटो, खून निकलेगा, ऑपरेशन होगा, लेकिन आत्मा को उस दर्द की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि वो पार्ट उससे डिटैच हो गया। ऐसे योग के द्वारा हम अपने को अगर डिटैच की अनुभूति करते हैं, तो क्या होगा कि जितना भी शरीर में व्याधि होगी, प्रॉब्लम होगी, होगी समस्या, प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हिसाब किताब तो चुक तो करना ही है, वो होगी, लेकिन ब्यूटी तो ये है उस दर्द की हमें अंदर अनुभूति न हो, तो खुशी खुशी उस दर्द को पार कर लेंगे। दर्द होगा ही नहीं तो चेहरे पर भी नहीं आएगा, आहा भी नहीं निकलेगी, कुछ भी नहीं, क्योंकि दर्द का अनुभव ही नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से अपने को हम डिटैचमेंट की अनुभूति करें, जैसे बाहर गर्मी से आए, 40-44 डिग्री टेम्परेचर है, एसी रूम में आए, एयर कंडीशन, वहां ठंडा है, बस बहुत अच्छी अनुभूति होती है। क्यों? क्योंकि यहां का वातावरण वहां से जुदा है, अलग है, दोनों के बीच में कट ऑफ है, दोनों वातावरण को मिलने नहीं दिया गया, तो ये ठंडा है, बाहर गर्म। ऐसे ही हमें ना अगर डिटैचमेंट की अनुभूति होगी, मैं आत्मा अलग और ये शरीर अलग, जो बाबा ने न्यारेपन की बात बताई, तो उससे क्या होगा, 50 बार हमने इस बात को अनुभव किया है, हमारे वरिष्ठ भाई बहनों के साथ जब भी हम लोग दादियों के साथ बैठते हैं, तो ये भट्टी है ही इसलिए कि आप ये अनुभूति करके जाओ कि मैं न्यारी आत्मा हूं, मैं न्यारी हूं, इससे मैं इस शरीर से अलग हूं, न्यारी हूं। बस उस संकल्प में स्थित हो जाएंगे तो आप देखोगे शरीर में जितनी भी कष्ट होगा, होगा बहुत कष्ट, लेकिन उसका अनुभव नहीं होगा बिल्कुल भी, लगेगा ही नहीं, चुभेगा ही नहीं, दर्द ही नहीं होगा, तो फिर उसका रिफ्लेक्शन चेहरे पर भी नहीं आएगा। तो ये तो एक है शरीर का पेपर बाबा ने बताया, और दूसरा परिवार का भी पेपर, कि बहुत हम परिवार वालों को देखेंगे कि कुछ बहुत पुराने भी हैं, बाबा ने कहा ये राजधानी स्थापन हो रही है तो क्या होगा, कोई बहुत पुराने पुराने भी बिल्कुल साधारण पुरुषार्थ उनका होगा और कई धारणाओं में कमजोर होंगे, कभी वार का खा लिया, कभी ऐसे पिक्चर देख ली, कभी कोई भी उनके अंदर, तो वो उनको देख करके जो नए भी होंगे, जो ऊंच पद पाने वाले होंगे, उनके मन में ये संकल्प आएगा, अरे ये इतना 25 साल पुराना, 40 साल पुराना, इसके मन में भी, इसके भी व्यवहार में ये कमजोरी, चलो मुझ में भी अगर ये कमजोरी आई तो क्या हुआ, तो क्या होगा कि वो जो है ना व्यक्ति, क्यों ये भूल जाते हैं हम कि ये राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा ने कहा है लास्ट सो फास्ट, उनका भी गायन है, बाद में आएंगे लेकिन बहुत 40 50 60 साल पुरानों से भी तीखे चले जाए, क्यों, धारणाओं में एकदम उनके मजबूती होगी। तो इस रीति से हमें ये देखना है कि मुझे अपने को देखना है, बस दूसरे को नहीं, क्योंकि दूसरे में कोई भी कमी कमजोरी होगी तो वो नहीं। इन सबका आधार मन ही है, और पता कैसे चलेगा बाबा का, हमने क्या देखा कि बाबा जो है ना धीरे धीरे धीरे, पहले 1962-63 में जब हम लोग मिला करते थे तो बाबा कहते थे आओ बच्चे, हाँ बताओ वहाँ कैसी सेवा चल रही है, वो सब सुनाया करते थे, क्या पुरुषार्थ है वो सब सुनाया करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे 65-66 हुआ, 67 हुआ, बस बाबा के सम्मुख जाते थे, बस एक दो बात ही हम कहते थे, बाबा कहते थे बच्चे बाबा समझ गया, बाबा अभी तो हमने कहना ही शुरू किया है, बात ही नहीं कही, नहीं नहीं बच्चे बस तुमने एक दो लाइन जो बोली बाबा समझ गया, और वाकई बाबा उस बात को समझ करके समाधान देता था। लेकिन 17-18 जनवरी को हमने क्या देखा, हम 17 जनवरी की सुबह यहाँ पर आ गए थे, आसाम में पोस्टेड थे बहुत दूर, और पहले जब हम आसाम में हमारी पोस्टिंग हुई थी तब हमारी वहां जाने की दिल नहीं थी, लेकिन बाबा ने कहा बच्चे वहां जाओ, वहां मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, और बस संदेश दोगे तो बाबा समय पर बुला लेगा। तो बस बाबा का संदेश दिया गया, और थोड़े टाइम में ही इतनी बड़ी 100-150 की क्लास मारवाड़ी माताओं की ज्यादातर करके ऐसे जम गई, और बस जनवरी मास में वहां पर बाबा ने हमें एक संदेश दिया, बच्चे आओ प्लेन से आओ। तो मैं वहां से आया और 17 जनवरी की सुबह यहां पहुंच गए। तो यहां क्या देखा हमने, बाबा की कर्मातीत अवस्था अपनी आंखों से देखी। 17 और 18 जनवरी को कोई पार्टियां बाहर की विशेष नहीं थी, हम ही आए हुए थे। तो जैसे ही हम बाबा के सम्मुख जाते थे, क्योंकि वहां तो बाबा के हर हफ्ते में दो पत्र आ जाया करते थे, एवरी वीक में, तो बस बच्चे ये सर्विस करो, ऐसे करो, इस तरह समझाओ, ये करो, पूरा सारा। और यहां पर आए तो यहां आके हम सोचते थे बाबा को वो सारा बताएंगे, सेवा का भी, अपनी अवस्था का भी, अपने पुरुषार्थ का, सब कुछ। बस बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा ऐसे थोड़ा दृष्टि दिए, यूं दृष्टि देके, अच्छा बच्चे ये कहने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाए। यानी कि हमें एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, मन में क्या हम संकल्प लेके गए हैं जो बाबा को सुनाने वाले हैं, बस बाबा उसका भी वर्णन कर देता था और उसका समाधान भी दे देता था। ऐसा 17 और 18 जनवरी को 6-7 बार हुआ कम से कम, कभी सुबह, कभी दोपहर, शाम, जब भी बाबा से मिलते थे, और बाबा बच्चे अच्छा ऐसा ये प्रश्न है तुम्हारा, ये मन में चल रहा है, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो। ये है मन जीते जगत जीत की स्थिति। जिसने अपना मन जीता हुआ होगा ना, वो दूसरे के मन में भी क्या चल रहा है तुरंत बता देगा। और यही नहीं बताएगा क्या चल रहा है, बल्कि जो प्रश्न चल रहा है उसका समाधान भी तुरंत दे देगा। 18 जनवरी को रात्रि क्लास में बाबा की मुरली चल रही थी, हम सम्मुख बैठे हुए थे, तो सम्मुख बाबा मुरली चला के वह बैठे बैठे ही हम बाबा के सम्मुख ही थे हिस्ट्री हॉल में ही, तो मेरे मन में संकल्प आया एकाएकी, अब बाबा सामने बैठा है, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के थ्रू मुरली चला रहे हैं, बाबा की कर्मातीत अवस्था, आप समझो कैसा वातावरण चार्ज्ड होगा। तो हमारे मन में एकदम संकल्प आया, बाबा कुछ बोले हमारे लिए, संकल्प ही आया। और जैसे ही संकल्प आया, बाबा की तो कर्मातीत अवस्था थी, बाबा तक वो संकल्प पहुंचा और बाबा ने तुरंत ही उसका समाधान कर दिया उत्तर, कि बाबा देखो बच्चे ये बहुत बच्चे हैं यज्ञ में, जैसे ये बच्चा बैठा है मोहन बहुत मीठा बच्चा है, कभी किसी की निंदा नहीं करेगा और संपूर्ण बन जाएंगे अंत तक। ऐसा बाबा ने वरदान दे दिया और वो वरदान हमेशा के लिए हमारे लिए गाइडलाइन बन गया। भक्ति मार्ग में जो कहते थे ना, भक्त के मन में कोई इच्छा होती थी, भगवान साक्षात्कार कराते थे, उसके सम्मुख आ जाते थे और बस भक्त कहता था और भगवान के मुंह से क्या निकलता था, तथास्तु। कोई बार्गेन करता था भगवान, भक्त ने स्कूटर मांगा तो भगवान कहे नहीं तुम साइकिल ही ले लो, ऐसे तो नहीं होता था ना। जो भी भक्त की मनोकामनाएं, तथास्तु, भगवान के भंडारे तो भरपूर हैं। तो इस रीति से वो मतलब ये भक्ति का जो भी गायन है वो हमारे ज्ञान मार्ग से ही सारा का सारा निकला हुआ है। तो यहां पर वो बाबा का अंतिम समय का क्लास, अंतिम उस दिन क्लास में ना मैं बताऊं कि क्या हुआ, कि सुबह तो बाबा ने क्लास नहीं कराई, बाबा की थोड़ा मतलब योग पूरा बाबा ने कराया। फिर उसके बाद बाबा ने यीशु दादी को कहा कि जितने पत्र हो आज लिखवा लो, कोई भी पेंडिंग काम नहीं। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी पेंडिंग वर्क रह जाता है तो अंत समय वही बुद्धि खींचती है, बुद्धि वहीं जाती है, अरे ये काम अगर मैंने ऐसा कर लिया होता शरीर छोड़ते वक्त, ये तो रह ही गया, मैंने अपना विल नहीं करी, ये इसकी घर की चाबी उसे नहीं दी, ये नहीं करा वो नहीं, जो भी काम बुद्धि, तो ऐसा कोई काम छोड़ो ही नहीं कि जहां हमारी बुद्धि चली जाए, क्योंकि अंत में प्राण निकलेंगे तो वहीं जाकर ही फंसेंगे प्राण। तो एक तो समेटने का इसीलिए बाबा कहते हैं। तो बाबा ने उस दिन सारे पत्र लिखवा लिए, कोई भी जो नक्की लेक का म्यूजियम है वहां पर बाबा ने उसकी फाइल पर साइन करके कि हाँ बच्चे उस मकान को ले लो, वहां सेवा करनी है। और इस तरह रोज क्लास 9 बजे रात को होती है, उस दिन बाबा ने जमुना प्रसाद भाई है यहाँ पर, उनको बुला के बोला 6 बजे ही आज बाबा क्लास जल्दी कराएगा, बच्चों को कह दो कि जल्दी भोजन करके क्लास में आ जाए, भोजन करके विशेष, क्योंकि उस दिन तो बाबा को अव्यक्त होना था। तो बाबा भी आ गए क्लास में और 7 बजे से उस दिन क्लास पूरी बाबा ने कराई। तो हमेशा कई बार तो हिसाब किताब होता है खांसी से वो, लेकिन तकलीफ होती थी, लेकिन उस दिन बाबा को एक बार भी खांसी नहीं आई, एक बार भी। वो बाबा की लास्ट की मुरली भी यहाँ जो ओम शांति भवन है उसके नीचे जो कैसेट डिपार्टमेंट है वहां 18 जनवरी की अंतिम बाबा की मुरली वहां कैसेट या सीडी मिलती है, वो आप सुनना, पढ़ो बार बार सुनो। तो उसमें बस बाबा का इतना फ्लॉलेस, एक बार भी न खांसी आई न वो, तो जो इस बात का प्रतीक है कि बाबा ने कर्म भोग, शरीर के कर्म भोग के ऊपर सारी विजय प्राप्त कर ली थी। तो ये तो आपने देखा पूरा कि किस प्रकार से बाबा ने अपना मन जीत करके दूसरे के मन को समझ करके वैसा उसके ऊपर कार्य किया, मन जीते जगत जीत का। लेकिन जगत जीत में तो प्रकृति भी आती है ना, तो मुख्य बात यह है कि जब बाबा क्लास करा के आए और बाबा ने कहा अच्छा बच्चों को याद प्यार, गुड नाइट, अच्छा बाबा बच्चों से विदा लेता है, छुट्टी लेता है। ये शब्द बाबा ने पहले कभी नहीं कहे, उसी दिन ही कहे। क्यों? क्योंकि बाबा को आभास हो गया था कि अब इस आत्मा का इस शरीर से हिसाब किताब चुक्त हुआ और बस अब मैं जाने वाला हूं। इसीलिए बाबा ने क्लास भी 2 घंटा प्रीपोन्ड करा ली, सारे दिन की दिनचर्या भी रीसेट कर ली पूरा का पूरा, और बस बच्चों से छुट्टी लेके। ये है भीष्म पितामह की तरह इच्छा मृत्यु। ब्यूटी तो तभी है, हम सभी भी ब्रह्मा बाबा की तरह ना मन जीते जगत जीत बन के अपनी इच्छा से शरीर छोड़े। शरीर तो सबको छोड़ना है, लेकिन अगर अपनी इच्छा से हमने नहीं छोड़ा, प्राकृतिक आपदाओं के कारण छोड़ा, क्या फायदा हुआ? फिर तो अंत मते सो गति जैसी तो होगी नहीं। उसके लिए एक बात है कि बाबा की तरह हम प्रकृति को भी ना अपना मित्र, जैसे बाबा ने जानकी दादी को वरदान दिया है। आपने सुना होगा जानकी दादी की, एक बार सन 2000 में बहुत तबीयत खराब हो गई, अहमदाबाद में थी, इधर बाबा आए हुए थे और उधर दादी की इतनी ज्यादा, 31 दिसंबर का दिन था 1999 सेंचुरी का, नई सेंचुरी का उदय, तो बहुत जयंती बहन को भी सब लोग, वो लोग आ गए, पत्र वगैरह टेलीग्राम फोन सब कुछ कर दिया गया था, और बाबा को यहाँ बताया गया बाबा दादी की बहुत तबीयत खराब है। तो बाबा ने कहा नहीं कोई बात नहीं बच्ची, वो तो प्रकृति जीत है और प्रकृति के ऊपर ही ना उसने, ये प्रकृति उसका अंत तक साथ देगी। आप लोग भी कभी दादी जानकी से मिलो, इस बाबत पूछना। तो बाबा ने ये वरदान दिया, प्रकृति उसका अंत तक साथ देगी। तो देखो अभी उसके बाद 17 साल तो हुए और भले तबीयत थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हिसाब किताबे चुक तो, लेकिन प्रकृति अंत तक हमारा भी साथ दे। उनका सुन के हम केवल खुश ना हो जाएं, मेरा भी आपका भी सबका साथ दे प्रकृति। उसके लिए एक एक बात का बस ध्यान रखना है, क्योंकि ये 5 तत्वों का बना शरीर है ना, तो ये 5 तत्व ही हमारे अंतिम पेपर हैं। तो ये हमारा मृत्यु का कारण न बने, उसके लिए पहला एक एक पेपर का देखना है। हा? जल तत्वों का पेपर, हम इन तत्वों को हम अपना मित्र बना लें, और मित्र मित्र की जान नहीं लेता है, तो उसको क्या करें, जल तत्व को मित्र बना लें। मित्रता एक जैसे संस्कार वालों के बीच में होती है। तो जल का मुख्य संस्कार क्या है? शीतलता। जल का मुख्य संस्कार ये भी है, एडजस्टमेंट। देखो गिलास में लिया, गिलास में एडजस्ट हो गया, कटोरी में लो कटोरी में, थाली में लो थाली में सेट हो जाएगा, चम्मच में लो चम्मच में। ऐसे हमारे भी संस्कार इतने फ्लेक्सिबल हो हम हर आत्मा के साथ एडजस्ट होके चल सके, और ये ना कहे भाई ये सास है इसके साथ मेरा संस्कार नहीं मिलता, ये फलानी ननंद है इसके साथ नहीं, भाई भाई का या कोई भी नहीं, सबके साथ मिलकर के संस्कार। तो क्या होगा, जल हमारी मृत्यु का कारण नहीं बनेगा। चाहे जितनी सुनामी आए, बाढ़ आए, फ्लड, ऊपर से बादल क्लाउड बर्स्ट हो, कुछ भी हो, लेकिन समय से कुछ सेकंड पहले ही हमारे मन के अंदर बाबा ने कहा ये मेरा बच्चों से वायदा है, अगर क्लियर और क्लीन बुद्धि होगी तो समय पर जो टचिंग होगी उनके पैर बच्चों के वहीं बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी। तो हमारा बाल बांका नहीं हो, सोचने की बात नहीं होगी, ऑटोमेटिकली। वहां बहुत उदाहरण है, ले अभी तो समय के उसमें नहीं बता सकते, लेकिन इस तरीके से जल को बना लिया। दूसरा पेपर पृथ्वी का, अर्थक्वेक की फॉर्म में। हाँ, पृथ्वी को कैसे मित्र बनाएंगे? पृथ्वी का कौन सा गुण है सबसे बड़ा? हाँ? सहनशीलता। उससे भी बड़ा गुण है दातापन का। पृथ्वी हमेशा देती है। पृथ्वी में देखो एक बीज बो दो 1000 बीज का पेड़ निकल आएगा। पृथ्वी से पानी मिलता है, तेल मिलता है, सब्जी गेहूं चावल जो भी चीज है उपज सब पृथ्वी से मिलते, पृथ्वी दाता है। ऐसे ही बाबा ने कहा आप बच्चे भी दाता बनो, कोई भी आपके सामने आए वो खाली हाथ न जाए। बस कौन सा दान? ये कपड़े का पैसे अनाज नहीं, उसके प्रति सहानुभूति प्रेम सद्भावना सहयोग। जिस रीति से जिस भावना से वो आया है, आपका माइंड अगर क्लियर होगा ब्रह्मा बाबा की तरह, जैसे बाबा अंत में माइंड पढ़ के उसकी इच्छा पूर्ण कर देते थे सबकी, ऐसे ही आपके सम्मुख दुनिया वाले आएंगे, अनेक इच्छाएं लेकर आएंगे, लेकिन ये भी पार्ट नोंदा हुआ है, रोती हुई आत्मा आएगी, कहने का टाइम नहीं होगा क्यों रो रही है, लेकिन आप उसका मन का भाव पढ़ के तथास्तु का जैसे वरदान देंगे, शांति मिले, शक्ति मिले, हर्षित रहो, तो वो आत्मा रोती हुई आएगी, हंसती हुई चली जाएगी। अशांत आत्मा आए, शांति के सागर में लहराती हुई चली जाए। ये कब होगा? जब आप दाता होगे, कोई भी आत्मा आपके द्वार से खाली न जाए, बस ये देखते रहो। जितनों से सारे दिन भर में मिले, इसमें खर्चा तो होता नहीं, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, सहयोग, सब के दान करते चलो। ऐसे ही वायु का क्या गुण है? हल्केपन का। वायु हर चीज को ऊपर ले जाती है, पृथ्वी हर चीज को नीचे खींचती है। तो ऐसे हम हर परिस्थिति में अगर हल्के रहेंगे, भारी ना हो, तो क्या होगा? वायु की तरफ से जो भी पेपर आएगा, साइक्लोन होंगे, बहुत बड़े बड़े बवंडर वायु के होंगे, उड़ा के ले जाएंगे, वो समुद्र के किनारे जो भी होते हैं उन्होंने तो ये सब अनुभव किए हुए हैं, तो क्या होगा? ये वायु हमारी मृत्यु का कारण नहीं बनेगी, क्योंकि वायु के साथ मैंने ये संस्कार मिला लिया। इसी तरह आकाश का क्या गुण है? विशालता, यानी कि जिसका हृदय विशाल होता है, महान आत्माओं का, उनका क्या होता है? उनमें क्षमा भाव होता है, रहम की दृष्टि होती है, वो कभी भी वो बदला लेने की भावना उनमें नहीं होती। ऐसे ही ये अगर हम अपने मन में भाव रखेंगे, मैं बहुत महान आत्मा हूं, इन सृष्टि की आत्मा, किसी ने भी कुछ कराया, मेरे मन से क्षमा भाव, क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें, हार नहीं। क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं। कायर क्षमा नहीं कर पाएगा, लेकिन हम ऐसे क्षमा करते हैं। तो ये आकाश का गुण है। तो क्या होगा? आकाश मार्ग से आने वाली जितनी भी आपदाएं होंगी, मिसाइल्स, रॉकेट, बम वगैरह, आकाश मार्ग से चाहे बरसात आए, चाहे अतिवृष्टि हो, अनावृष्टि हो, अति गर्मी हो सूर्य की, कुछ ये हमारा बाल बांका नहीं कर सकती, मृत्यु का कारण नहीं बन सकती, अगर हमने आकाश को अपना मित्र बनाया होगा, आकाश को दोस्ती। और ये तो कितनी बार हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए हैं इन तत्वों के ऊपर, योग के प्रयोग की काफी मुरलियां अभी बाबा की रिसेंटली चली हैं पिछले एक दो मास में। तो योग के प्रयोग करो, बाबा ने कहा संकल्प शक्ति ही योग का आधार है, यानी मन ही योग के प्रयोग का आधार है। ब्रह्मा बाबा भी योग का प्रयोग करते थे, दादा विश्वरत यहाँ पर विश्व किशोर होते थे, उनका बंबई में ऑपरेशन हुआ, रमेश भाई का फोन आता था, बाबा दादा की बहुत दर्द रहा, रात भर नींद नहीं आई, तो बाबा ने कहा अच्छा, नेक्स्ट डे बाबा ने बहुत उन्हें योगदान करा और योगदान से वो बहुत आराम से सोए। अगले दिन बाबा ने फिर केयर नहीं करी, चलो बहुत अब तो आराम हो गया, योगदान नहीं किया, फिर उन्हें बहुत ही कष्ट हुआ। तो भाव ये है जी कहने का कि हम इन तत्वों को भी मित्र बना, जैसे बाबा ने। और बाबा का इसीलिए क्या देखा पांचों तत्वों का, कि ये तत्व बना 18 जनवरी को बाबा ने शरीर छोड़ा, और 18 की रात भर शरीर रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, 21 को दोपहर के बाद बाबा का संस्कार किया गया। कोई इंजेक्शन नहीं दिया गया, कोई केमिकल लोशन नहीं लगाया गया, लेकिन बाबा का शरीर वैसे ही चमकता हुआ, गोरा, नहीं तो शरीर काला पड़ जाता। और सबसे बड़ी बात, हम लोगों ने जब बाबा को स्नान कराया 21 तारीख को अग्नि विसर्जन करने से पहले, तो काफी हद तक बाबा के शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी थी। बहुत डॉक्टरों से पूछा हमने, कईयों से, वो कहते हैं ये तो हो ही नहीं सकता। हमारे सभी वरिष्ठ भाई बहनों ने देखा कि किस प्रकार से फ्लेक्सिबिलिटी, नहीं तो ये तो एक ऐसी बात है जिसे कोई भी स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन ये है प्रकृति पर विजय का प्रतीक। मन जीते जगत जीत में ना, जगत में प्रकृति भी आ गई, तो पांच तत्वों को भी अगर हमने पवित्र नहीं बनाया होगा, इन्हें जीता हुआ नहीं होगा, तो अंत में हमारी विजय हो ये एकदम सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। इसीलिए रोज प्रकृति को दान करना बहुत आवश्यक है, चाहे 5 मिनट 10 मिनट रोज ऐसी जगह चले जाओ जहां पांचों तत्व आपको दिख रहे हो, आकाश भी हो, पृथ्वी भी हो, कुछ जल भी हो और सूर्य का भी अगर हो, और एक एक तत्व को 2-2 मिनट भी रोज दान करेंगे। उनका वर्णन उनके साथ बाबा ने एक मुरली में बहुत अच्छा बताया था, कैसे दान करो, उनके साथ वार्तालाप करो। बहुत ऐसे हैं, अभी तो मैं नहीं बताता, लेकिन एक बता के समाप्त करता हूं कि हम लोग वहां केरल में थे, अभियान निकल रहा था, हम लोग सुबह 4 बजे उसी दिन, एक दिन पहले बाबा की मुरली चली थी, 96 की बात है ये, तो बाबा ने कहा था बच्चे ये जो तत्व है ना, ये हैं देवता, इनको आज तक देवता मानते हैं, जल देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, इनसे वार्तालाप करो। और इनसे क्या वार्तालाप करो, बाबा ने एक एक शब्दों में बहुत स्पष्ट बताया था, हे जल देवता, आप भी देवता हो, हम भी ओवनार देवता है, आओ हम लोग शेक हैंड करें, मिलें, इस धरती को पावन बनाएं, हमारा आपका पार्ट तो बहुत जन्म जन्मांतर का है, आओ हम सुख का सुख स्वरूप बने और सर्व आत्माओं को सुख और शांति का दान दें, आओ इसके लिए आप हम शेक हैंड करें। तो अगले दिन हम 4 बजे 3:30 बजे समुद्र के किनारे पहुंच गए, बहुत दूर समुद्र के किनारे बहुत बैठ गए, एकदम समुद्र शांत था। लेकिन बाबा ने एक दिन पहले उसी दिन रात को मुरली चलाई हुई थी, यहां से हम लोगों को मिली थी, और उसी मुरली के आधार पर आओ जल देवता, आप भी देवता हो, हम भी देवता है, आओ हम सब मिल करके इस सृष्टि को पावन बनाएं, उससे पहले हम और आप शेक हैंड करें, मिले। 4 बजे से योग शुरू किया, 4:15 4:45 5 बजने में जब सिर्फ 2-3 मिनट ही शेष थे ना, तो पता नहीं कहां से एक बहुत तेज लहर आई, और जहां हम सब लोग करीब 15-20 भाई बहन बैठे हुए थे समुद्र के किनारे बहुत दूर बालू में, और वहां आई हम सबके चरण स्पर्श करके वो जैसे लहर चली गई। ये एक हर एक को लगेगा अरे ये कौन सी बड़ी बात है, लेकिन ऐसे ऐसे प्रयोग हम लोगों ने बरसात के ऊपर, सूर्य के ऊपर, विदेशों में भी प्रयोग हुए हमारी वरिष्ठ बहनों के द्वारा, इसकी भी एक सूची है। आप सब भी योग के प्रयोग करो, अपने ऊपर प्रयोग करो, अपना बीमारी के ऊपर, संबंधों के ऊपर, इनके ऊपर, और जब आप देखेंगे उसका रिजल्ट, अपने आप ही विश्वास होगा हाँ इन तत्वों तक हमारी वार्तालाप पहुंच रही है, ये हमारे आ रहे हैं निकट, और हमारा अंत इन तत्वों पर ही निर्भर करता है, क्योंकि ये 5 तत्वों का बना शरीर जैसे ही छूटा आत्मा अलग होगी, लेकिन ऐसे ये छूटे हमारी इच्छा से। इसीलिए अंत में बस यही संकल्प रखे कि बाबा मुझे भीष्म पितामह की तरह अपने संकल्पों से ही शरीर को छोड़ के आपकी तरह जगत जीत मन जीत जगत जीत बन के जाना है, यही संकल्प रख के हम सदा योग करेंगे, बाप क्या बच्चे की इच्छा पूरी नहीं करेगा। ओम शांति, ओम शांति। है जी, अच्छा अग्नि का एक मिनट में बता दें, अग्नि माने सूर्य, सूर्य में क्या विशेषता होती है, अग्नि में क्या विशेषता होती है, अग्नि में जो भी चीज डाली जाती है उसका स्वरूप बदल जाता है, रूप बदल जाता है। ऐसे ही हमारा ज्वालामुखी स्वरूप योग जो है ना, ऐसा ज्वालामुखी स्वरूप हो, जो भी आत्मा आए उसका स्वरूप बदल जाए, दुख से भरपूर, अंत में बहुत दुख से तड़पती आत्मा आएंगी, अकाले मृत्यु होगी, चारों तरफ हाहाकार होगा, जैसे वो हमारे सम्मुख आए उनका दुख का स्वरूप बदल के सुख के स्वरूप में हो जाएगा, और वो रोती हुई आएंगी हंसती हुई चली जाएंगी। लेकिन कब होगा, जब हमारे मुख से वॉल्केनिक योग, ज्वालामुखी योग उसकी अनुभूति होगी, ऐसा हो कि उनके दुख उसमें भस्म होने की उन आत्माओं को अनुभूति होगी, तभी तो वो रोते हुए आएंगे हंसते हुए जाएंगे, अशांत आएंगे शांति स्वरूप बन के जाएंगे। तो इसीलिए अग्नि स्वरूप माने सूर्य, और ये अगर हमने गुण धारण किया होगा सूर्य का, ये कब होगा? जब हमेशा सूर्य की तरफ हमारा मुख होगा। बहने हमारे बताते हैं ना, जब क्लास कराते हैं सूर्य की तरफ मुख होता है, छाया पीछे पड़ती है, और जब घूम गए छाया आगे आगे चलती है। तो वो छाया क्या है? माया, हमारी कमजोरियां, अंदर की कमजोरियां। अगर ज्ञान सूर्य बाबा की तरफ मुख हुआ, माया जितनी भी शक्तिशाली हो वो हमारे पीछे रहेगी, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। लेकिन जैसे ही भगवान से विमुख हुए, अगर संकल्पों में भी माया के वशीभूत कुछ हुए, तो वो छाया हमारी गाइड बन के आगे आगे चलती रहेगी, हम उसके पीछे हो जाएंगे। इसलिए ये देखना है कि ज्ञान सूर्य से भी हम कभी विमुख ना हो। ये तो मैंने एक एक जस्ट गुण टच किया है, हर एक के कम से कम पांच पांच आप लोग निकालना, ये होमवर्क है। तो उसके वो गुण धारण करेंगे तो कभी भी प्रकृति हमारी मृत्यु का कारण नहीं बनेगी। हम जब प्रकृति को ऑर्डर देंगे, हाँ अब मैं तैयार, जैसे ब्रह्मा बाबा ने कहा, हाँ बच्चे अब हम तैयार, तो बस प्रकृति आई और बाबा ने दिखाया था उस समय कैसे पुष्पक विमान साक्षात्कार में, वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा अभी, क्योंकि उन दिनों वहां कैसे चार पांच बार बाबा ने को के पास बड़ी दादी ने संदेशी को भेजा, और उस रात क्या क्या संदेश वगैरह लाए, ये तो अपने आप में भी एक अनोखा है। लेकिन ये समझो हम सब के लिए एक आई ओपनर है। ओम शांति।
ओम शांति। भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत दिल से, जिगर से, आंखों देखा हाल, साकार ब्रह्मा बाप के अंतिम कर्मातीत स्वरूप का हम सभी को नजारा आदरणीय भाई जी ने बताया। प्रकृति जीत कैसे बने उसकी सहज विधि भी हम सबके सामने रखी। हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं।